हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 17। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्राव्रजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति द्विषतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससोऽनुमुपया मि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 17 पढ़ेंगे, आपकी जो छह ये 17 से लेकर 17, 18, 19, 20, 21 और 22 मतलब श्रवताम स्वकथाम कृष्णा से लेकर अतो वय कवयो नित्यम यहाँ तक ये जो छह श्लोक हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। हमारे गुरु महाराज स्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इन श्लोकों के विषय में अपने लेटर्स में बहुत लिखते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तो ये छह श्लोक ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। तो आज हम श्री प्रभुपाद के विषय में कुछ सुनेंगे कि इन श्लोक्स ने श्री प्रभुपाद जी को किस तरह की प्रेरणा दी। श्री प्रभुपाद जी कलकत्ता नगर में उनका जन्म हुआ था और अपने गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी से श्री प्रभुपाद जी 1898 में उनका जन्म हुआ था और 1922 में 26 इयर्स की एज में उनकी प्रथम भेंट हुई थी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से। उनसे प्रथम भेंट में ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उन्हें ये अनुरोध किया था कि आपको प्रचार करना चाहिए भगवान की, आप कितनी अच्छी इंग्लिश आप जानते हो, आपको पाश्चात्य जो वेस्टर्न कंट्रीज में उनमें जाकर प्रचार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने कहा मैं प्रचार तो हाँ आपको करना चाहिए, यही तो जीवन का लक्ष्य है। तो उसके बाद कभी अभी भेंट होती लेकिन है ना श्री प्रभुपाद जी ने 11 वर्ष के बाद यानी 22 में फर्स्ट टाइम वो मिले थे और 1933 में इलाहाबाद में उनकी विधिवत दीक्षा उनसे प्राप्त कर ली। और दीक्षा के समय श्री प्रभुपाद की आयु 34 इयर्स थी और उसके बाद 1950 में यानी 54 इयर्स की एज में श्री प्रभुपाद ने गृहस्थ जीवन से अवकाश ले लिया यानी वानप्रस्थ ले लिया और उसके बाद वो वृंदावन चले गए। वृंदावन में 12 साल तक रहने के बाद वृंदावन में वो 12 साल तक रहे और बहुत बहुत शास्त्रों का लिखे शास्त्रों को लिखे और प्रचार किया। परंतु श्री प्रभुपाद ने ये रियलाइज किया कि यहाँ भारत में कृष्ण भक्ति जो है ना वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुत मत जमा हो गए थे और जो प्योर चीज श्री प्रभुपाद जी देना चाहते थे वो ग्रहण करने के योग्य कोई नहीं था। क्यों, उसकी क्या वजह थी कि ना भारत के लोग जो है वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और हर चीज इम्पोर्टेंट चाहते थे, कोई भी चीज उनको इम्पोर्टेंट चाहिए थी, वो ये लोकल कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। श्री प्रभुपाद ने कहा ये इतना सुंदर ज्ञान है, वास्तव में यह आध्यात्मिक ज्ञान भारतीय है क्योंकि भारत से है, परंतु क्योंकि भारत के लोग इतने मूर्ख हैं कि अपनी वस्तु को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो इसी ज्ञान को मैं इम्पोर्ट करके आऊंगा, इम्पोर्ट यानी कि वेस्ट कंट्रीज में लेकर जाऊंगा और वेस्टर्न कंट्रीज से जब ये आएगा तो भारत के लोग इसे स्वीकार करेंगे। श्री प्रभुपाद ने यही सोचते सोचते उस समय उनकी आयु 70 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति एक संत ये सोच रहे हैं कि मैं जो ज्ञान जिसे मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ जो इतना प्योर है वो मुझे अकेले इसका स्वादन नहीं करना चाहिए, इस संसार भर में मुझे इसका प्रचार करना चाहिए। 70 वर्ष की आयु में आज कोई सोचेगा ऐसा, निकलेगा कोई घर से, या तो 70 वर्ष की आयु में या तो वो हॉस्पिटल में पड़ा होगा या घर में अगर होगा तो अपने बहू और अपने बच्चों को परेशान कर रहा होगा और बाकी भक्ति वक्ति होती नहीं है। लेकिन ये श्री प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो आए थे भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए और यही सोच करके ये संदेश मुझे दुनिया भर में देना है, इसलिए उन्होंने अपने गुरु महाराज के आदेश को स्मरण किया और अपने गुरु के धर्म अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का विचार किया और एक मालवाहक जो कार्गो शिप होता है ना उसके अंदर बैठकर वो अमेरिका जलदूत में बैठकर अमेरिका जाने के लिए उन्होंने प्रयास आरंभ किया। वहां पर जो शिप के जो लोग थे उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को कहा कि आप इतनी आयु में इस शिप में बैठोगे तो यहाँ का वातावरण इतना अच्छा नहीं है, आप बहुत बड़े हो गए हो, यहाँ पर बहुत इतनी ठंडी होती है और ये इसका इस जहाज का भी कोई भरोसा नहीं है। ये हम जानते हैं इतना बड़ा शिप जो कि टाइटैनिक था जिसको बनाने के लिए इतना सारा धन अर्जित किया गया लेकिन वो भी डूब गया। तो उन्होंने बोला कि देखो ये जो जहाज है उसका कोई भरोसा नहीं, आप इसमें मत चलो। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि आपको इस पे भरोसा नहीं है परंतु मुझे मेरे कृष्ण पर भरोसा है, मैं जाना चाहता हूँ। तो 70 साल की आयु में एक संत, कोई उनके साथ कोई सपोर्ट नहीं था, न धन था, न कोई और कोई सामान था, केवल और ना ही वहां पर कोई ऐसा था कि भाई मेरा कौन रिश्तेदार है, मुझे कहाँ पर उतरना है, कैसे मैं आगे ना प्रीच करूंगा, कुछ भी कोई आयोजन नहीं है। केवल कृष्ण का सहारा लेकर, कृष्ण के नाम का सहारा लेकर श्री प्रभुपाद जी जा रहे थे। तो रास्ते में बहुत बुरी घटना हुई कि श्री प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आ गया। अब इतनी वृद्धावस्था में पहला हार्ट अटैक आया, फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी अभी संभले ही नहीं कि दूसरा हार्ट अटैक आ गया। श्री प्रभुपाद ने सोचा वाकई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। एक तो मैं वहां जा रहा हूँ इतना कामी, न्यूयॉर्क जो है वो उस समय इतना कामी सिटी था, अभी भी है, लेकिन वहां पर लोग नशा करते थे और साथ में ऐसे इंजेक्शंस लेते थे जैसे एलएसडी का प्रयोग करते थे और जिससे एक साथ में उन्हें बहुत बहुत नशा उनको हो जाता था और वो हर प्रकार के अवैध संग करते थे और हर प्रकार के अपराध करते थे जिनको बोलना भी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरह से कहा जाए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी सोचने लगे वाकई मुझे नहीं जाना चाहिए था, मैं वहां जाकर करूंगा भी क्या, एक तो वहां कंडीशन ऐसी है कि मेरी कोई बात पता नहीं सुनेगा या नहीं सुनेगा, और दूसरा ये कि मेरी अपनी तबीयत भी, अब दो हार्ट अटैक आ गए हैं, अब मैं वहां जाकर ऐसा ना हो कि मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। ऐसे कहते कहते श्री प्रभुपाद जी एक भजन लिख रहे थे, श्री प्रभुपाद जी बहुत हताश हो गए थे और एक भजन लिखा श्री प्रभुपाद ने, बड़ो कृपा कोयलो कृष्ण अधमेर प्रति, कृष्ण इस अधम के ऊपर आपने बहुत कृपा की है। और श्री प्रभुपाद ने उस भजन में भी इन श्लोकों के विषय में, ये जो 6 श्लोक आज से हम पढ़ेंगे, उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को बहुत बहुत आश्वासन दिया, बहुत बहुत श्री प्रभुपाद जी को ढारस बनाई। और श्री प्रभुपाद ने अपने लेटर्स में भी बहुत बहुत इनके विषय में कहा कि ये जो 6 श्लोक हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अमेरिका गया, कुछ नहीं लेकर गए थे, केवल ये भागवत कथा, केवल ये भगवान का नाम, ये दो बल लेकर गए थे और नक्शा चेंज कर दिया दुनिया की, है ना, नक्शे में अमेरिका के जो लोग थे उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। आज उन्हीं की कृपा से जो अमेरिका के इतने कामी सिटी के जो व्यक्ति हैं वो भारत में आ रहे हैं दीक्षा देने के लिए भारतीयों को, राधानाथ स्वामी जो कि अमेरिका के हैं और 30,000 भारतीयों को शिक्षा दे चुके हैं, तो दीक्षा, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इस श्रीमद् भागवतम के वचनों और, है ना, भगवान के पवित्र नाम के प्रति उनकी श्रद्धा थी जिसके कारण ये सब आज संभव है, हो सक रहा है कि संसार के कोने कोने में महामंत्र का हम श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रचार हो रहा है, तो श्रीमद् भागवतम के शब्द हैं वो कोई साधारण नहीं है, बहुत बहुत इनके अंदर शक्ति है। हमने श्लोक नंबर 15 में पढ़ा था ना, यदनुध्यासिना युक्त कर्म ग्रंथि निबंधनम सिंदन्ति कोविदास्तस्य कौन कुरियात कथारते। ये जो कर्म ग्रंथि निबंधनम शब्द है ना, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वास्तव में भक्तों, हमारे मनुष्य, हमारे किसी भी मनुष्य का शास्त्र तो यहाँ तक कहता है, एक छोटे से छोटी चींटी से लेकर संसार का बड़े से बड़ा जीव, ब्रह्मा जी, इंद्र, बड़े से बड़ा देवता भी क्यों ना हो, उनको अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता करना पड़ता है। लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है जो आपके कर्म के ग्रंथनी को तोड़ देता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अगर आपके जीवन में सुख लिखा है तो आप चाहे कितना, कोई चाहे कितना भी ना प्रयास करे, आपको दुखी नहीं कर सकता। लेकिन यदि आपके जीवन में दुख लिखा है तो आप भले कितना भी प्रयास करो, दुखों को समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कर्मों का है वो आपको भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी है, यदनुध्यासिना युक्तम, ये जो भगवान का ध्यान यहाँ पर कहते हैं, ये जो कर्म की ग्रंथि है ना, कर्म की जो गांठ है उसको काट देती है। क्योंकि हम जब भागवत महापुराण श्रवण करते हैं तो भगवान का ध्यान जब हम इसके द्वारा करते हैं तो हमारे कर्म कट जाते हैं। केवल भगवान के अंदर, केवल भगवान की कथा के अंदर ही इतना पावर है कि वो हमारे कर्मों से हमारे ज्ञान छुड़ा सकते। भगवान कहते हैं तुम आओ मेरे पास, अहम तो आम सर्व पापे, तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हें दुख मिल रहा है, तुम्हें जो अपराध वाले कर्म किए उसी के कारण दुखी हो ना, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हें कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम खाली मेरी कथा को श्रवण करो। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी पूछते हैं, कौन है कुरियात कथा रहते हैं, कौन होगा ऐसा जो अपने दुखों से छूटना नहीं चाहेगा, कर्म ग्रंथनी को तोड़ना नहीं चाहेगा, ऐसा कौन होगा। तो फिर उसके बाद बताया श्लोक नंबर 16 में कि भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न करने के लिए चार चीजें बताएं, कि सबसे पहले तो आपके पास अपनी दो चीजें होनी चाहिए, वो क्या है, इच्छा होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। ये दो चीजें होंगी, उसको डिवेलप किया जा सकता है, किससे, ज्ञान सेवया विप्रा पुण्य तीर्थान सेवन, पुण्य तीर्थ में जाकर भगवान की, जहाँ पर भगवान की लीलाएं हुई हैं, उन तीर्थों की यात्रा करके और वहां पर संतों की सेवा करके। बहुत बहुत इसके उदाहरण हैं जिन्होंने केवल संतों की सेवा करके ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। और बहुत, जैसे हम देखते हैं, सबसे ज्वलंत प्रमाण है नारद मुनि, केवल संतों का उचिष्ट खाकर ही वो इस नारद की पदवी तक पहुंचे। हम देखते हैं शबरी जी, वो शुद्र थी, बिल्लनी थी, लेकिन फिर भी केवल अपने गुरु मातंग मुनि के आशीर्वाद से उन्हें भगवान के, उन्होंने कहा, जब मातंग मुनि जा रहे थे तब कहा शबरी ने कि गुरु महाराज आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, तब उनके गुरु महाराज ने कहा हाँ शबरी, मैं भगवान को खोजने के लिए जा रहा हूँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। तो शबरी ने कहा गुरु महाराज मुझे भी लेकर चलो ना। तब मातंग मुनि ने कहा नहीं शबरी, तुम्हें भगवान को खोजने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने गुरु महाराज की इतनी सेवा की है कि भगवान स्वयं आएंगे तुम्हें खोजते खोजते। वास्तव में भगवान के भक्तों की सेवा करना बहुत बहुत महान कार्य है, और तीर्थों में जाना और भगवान की, भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो उससे हमारे हृदय के अंदर जो इच्छा है उसमें रति उत्पन्न हो जाती है और श्रद्धा विकसित हो जाती है। आज का श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, कृपया इन पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत जी कहते हैं, श्रवताम स कथा कृष्ण पुण्य च श्रवण कीर्तनः रिद्यन्तहस्तो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् फिर से पढ़े श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् श्रवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंस्तस्थो ह्य भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् शब्दों का अर्थ देखिए श्रवताम श्रवणताम का क्या मतलब होता है जिन्होंने कथा सुनने की रुचि उत्पन्न कर ली है अब जो इन्होंने चार तरीके बताए उसको यदि हम फॉलो करते हैं कि हम भक्तों की सेवा करते हैं और श्रवण करते हैं श्रवण करेंगे तो शुरू में इच्छा होगी और फिर करेंगे तो रुचि उत्पन्न होगी और भक्तों की सेवा करेंगे और पुण्य तीर्थों में जाएंगे तो रुचि उत्पन्न होगी उससे होगा क्या रुचि उत्पन्न करने के बाद क्या होगा वो बता रहे हैं श्रवताम स्वकथा स्वकथा का मतलब होता है अपनी वाणी कृष्ण यानी भगवान पुण्य श्रवण कीर्तन कि भगवान जो है उनकी जो कथा है वो पुण्य प्रदान करने वाली है वो बहुत बहुत आपको ना पुण्य श्रवण कीर्तन यदि हम भगवान की कथा करते हैं और श्रवण करते तो उससे बहुत बहुत पुण्य प्रदान होता है हमें वास्तव में ये जो भगवान है उसकी खाली कथा को श्रवण करने से ही जीव जीव को बहुत बहुत पुण्य लाभ होता है बहुत बहुत इसके उदाहरण है कि केवल कथा श्रवण करके अब देखिए महाराजा परीक्षित इनको श्राप मिला है कि वो 7 दिन के बाद मर जाएंगे उनका सब कुछ मृत्यु का मतलब क्या है मृत्यु का मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा मृत्यु सर्वहरस्यां कुछ नहीं रहने वाला लेकिन भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं तो इतना संतोष है उनको कि 7 दिन हो जाने तक उनको ये भी याद नहीं रहा कि मैंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया ये जो हमारे जो हृदय में ये उल्टी सीधी वासनाएं आ रही है ना ये भी करना है वो भी करना है ये भी प्राप्त करना है वो भी प्राप्त करना है केवल कथा श्रवण करने से हमारे समस्त हृदय के अंदर जो अभद्र है वो नष्ट हो जाएंगे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण केवल तुम्हारी कथा श्रवण करनी वास्तव में कथा श्रवण करना बहुत बड़ा लाभ है यहाँ तक के जो भगवान को प्राप्ति में सुख नहीं है उतना जितना कि कथा श्रवण करने में उतना सुख है मैं आपको एक उदाहरण दूं एक बार क्या हुआ जब त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण को जब इंद्रजीत ने बाण लगाया था ना जिसमें वो सर्प पाश में बंद गए थे, तो हनुमान जी को बोला गया कि क्योंकि ये सर्प पाश में बंद गए हैं तो इस पाश को केवल गरुड़ जी ही खोल सकते हैं, आप जाइए गरुड़ जी को लेकर आइए। तो हनुमान जी गए गरुड़ जी को लेने के लिए। गरुड़ जी जब आए तो देखकर हैरान हो गए कि ये भगवान है, यूं जो पाश में पड़े हुए सर्प पाश में बंधे हुए उनको मैं छुड़ाने के लिए आया हूँ, ये भगवान है। तो उनके हृदय में ये ऐसी धारणा आ गई, गरुड़ जी को जानते हो आप कौन थे, वो भगवान विष्णु के वाहक हैं, वो भगवान विष्णु के साथ सदैव उनके वाहन के रूप में रहते हैं और कंटिन्यूस भगवान का संग उन्हें मिलता है, लेकिन फिर भी भगवान की लीला को देखकर उनके हृदय में संशय उत्पन्न हो गया और वो कहने लगे कि ये ना इतने भगवान कैसे हो सकते ये। तो फिर उनको खोला और फिर भी उनके हृदय का ये संदेह मिटा नहीं, तो फिर भगवान ने उन्हें ये आदेश दिया, विष्णु भगवान ने, कि आप ऐसा करो कि सुमेरु पर्वत पर काकुशंडी भी कथा करते हैं, आप उधर से होकर आओ, कोई ऐसे ही भेजा कि आप उधर जाओ कोई काम से। तो वहां पर वो गए और उनकी जब मुखारविंद से काकभूषणी के मुखारविंद से भगवान के कथा को जब सुना, तब उन्हें भगवान के विषय में जो संशय था वो मिट गया। तो फिर जब वापस गए तो कुछ दिनों के बाद गरुड़ जी कहने लगे कि भगवान मुझे छुट्टी चाहिए। तो विष्णु जी ने बोला किस बात की छुट्टी? बोला देखो मैं कितने टाइम से ना आपकी सेवा कर रहा हूँ, ना कभी मैंने कोई सिक लीव ली है और ना ही कोई अर्जेंट वर्क, ना आपने मुझे छुट्टी दी है, मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो तुम गोलोक में रहते हो, मेरे धाम में रहते हो, मेरा सानिध्य प्राप्त है, छुट्टी तो इंसान रिफ्रेशमेंट के लिए करता है ना कि मैं अभी थक गया हूँ, तो यहाँ मेरी सेवा करके तुम्हें थकन या मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा सुंदर कार्य है ये, इसी में तुमको एंजॉय होना चाहिए, इसके अतिरिक्त और क्या ऐसी चीज है जिसमें तुमको आनंद आएगा, ये तो कितना आनंदमय कार्य है तुम्हारा। तो गरुड़ जी ने कहा देखो भगवान आपकी सेवा करने में मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है, मैं फिर से सुमेरु जाना चाहता हूँ, काकभूषणी जी के मुखारविंद से आपके आपकी कथा को श्रवण करना चाहता हूँ और मुझे छुट्टी दे दो, मैं कुछ समय के लिए वहाँ पर जाकर आपकी कथाओं का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं कथा को श्रवण करता हूँ तो आपके प्रति मेरी प्रीति में करोड़ों गुना ज्यादा और भी बढ़ जाता है प्रेम। तो वो फिर से तो विष्णु भगवान बहुत खुश हुए और बोला हाँ तुम जाओ। और फिर जो काकभूषणी है ना वो कंटिन्यूस कथा कर सतत कथा करते हैं, मतलब हमेशा कथा करते रहते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। और है ना जब भगवान श्री राम जिस युग में आते हैं, जैसे त्रेता युग में जब वो आते हैं, तो 5 साल की आयु तक वो भगवान की लीलाओं में उनका सहयोग करते हैं, भगवान के साथ वो लीला करते हैं। तो सिर्फ ये 5 साल तक उनके सुमेरु पर्वत में कथा नहीं होती है और कंटिन्यूस कथा होती है, बड़े बड़े देवता भी आकर उनके यहाँ पर कथा श्रवण करते। तो कथा की इतनी महिमा है कि स्वयं गरुड़ जी जो कि भगवान के साथ रहते हैं वो भी भगवान की कथा श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। हनुमान जी को भगवान ने कहा चलो हनुमान अब मैं जा रहा हूँ, इस संसार में मेरा कार्य समाप्त हो गया। तो हनुमान ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हैं? तो बोला अब चलते हैं गोलोक में। लेकिन हनुमान ने कहा क्या वहाँ पर कथा श्रवण करने को मिलेगा? तो श्री राम ने कहा कथा की क्या आवश्यकता है, कथा श्रवण करने का लाभ क्या है कि मैं प्राप्त हो जाता हूँ, और जब मैं प्राप्त हो जाता हूँ फिर कथा की क्या आवश्यकता? तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, फिर मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर सदैव आपका भजन करता रहूंगा, आपकी कथाओं को श्रवण करता रहूंगा, जहाँ जहाँ भगवान आपकी कथा होगी मैं वहीं पर जाऊंगा। तो वास्तव में कथा जो है भगवान की कथा का श्रवण करना वो भगवान की प्राप्ति से ज्यादा आनंदमय है। क्यों, क्या होता है भगवान की कथा श्रवण करने से, वो आगे पढ़ते हैं। सूची बता रहे हैं रिद्यंतस्थो या भद्राणी। रिद्यंतस्थो का क्या मतलब होता है? रिद्यंत इसका मतलब होता है अपने हृदय के भीतर। अब हृदय के भीतर क्या होता है? एक सामान्य मनुष्य के हृदय के भीतर केवल अभद्र होते हैं, केवल अना बुराइयां होती हैं, केवल काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं हृदयंतस्तु ही अभद्राणि। अभद्राणि यानी पदार्थ को भोगने की इच्छा। सबसे बड़ा जो अभद्र है वो यही इच्छा है। इच्छा के कारण ही हमारे हृदय के अंदर जो इच्छा है ना, उसी के कारण बाकी सब जितनी भी बुराइयां हैं वो हृदय के अंदर प्रवेश करती हैं। पहले काम, काम से क्रोध, क्रोध से लोभ, लोभ से मोह, मोह से मद मात्सर्य और अहंकार, ये सब काम का वास्तव में जो सबसे बड़ा हमारा जो दोषित जो मन का बड़ा सबसे दोष है वो है इच्छा। क्योंकि हम अपने आप को भगवान का दास नहीं मानते हैं, इसी हृदय के अंदर अनेक अनेक इच्छाएं होती हैं कि कैसे प्रभुत्व जताए, कैसे इंद्र तृप्ति करें, ये सबसे बड़ा दोष है। लेकिन जब कथा सुनते हैं तो कथा सुनते 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 हृदय के अंदर जो ये दोष है वो समाप्त हो जाता है और हम ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान का जब कथा श्रवण करते हैं तो ये व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य आ जाता है कि कुछ नहीं मेरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो यह इच्छा, पदार्थ को भोगने की इच्छा विधनोति, कितना सुंदर शब्द है। विधनोति का मतलब होता है स्वच्छ करता है, विमल बना देता है। और सुहृत सताम का मतलब होता है, सुहृत मतलब उपकारी है, सताम का मतलब होता है सत्यनिष्ठ। यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान उनके सुहृत हैं, भगवान उनके मित्र हैं। और यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान क्या सुहृत सताम है? क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में कहते हैं सुहृत तेषु सर्वभूतानां, मैं तो सारे समस्त जीवों का सुहृत हूँ। लेकिन यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान तो सबके सुहृत हैं, सबके साथ मित्रवत्व व्यवहार करते हैं, लेकिन जीव ही नहीं चाहता कि भगवान उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। इसलिए जीव कहता है कि भगवान निराकार है। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहता हूँ, सुहृत सुहृदेषु सर्वभूतेषु। लेकिन वो बोलते नहीं भाई, भगवान तो निराकार है, अब निराकार से कैसे मित्रता करे, कैसे भगवान दोस्ती करे? तो फिर भगवान को जो साकार मानते हैं, जो भगवान से मित्रता करना चाहते हैं वो भक्तगण है। तो सूत गोस्वामी ने कह दिया कि भगवान भले बोलते रहे सबको कि मैं सबका मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ, सबका मित्र हूँ, लेकिन जो मित्रता का हाथ बढ़ाएगा नहीं तो उनके साथ कैसे मित्रता करेंगे। इसलिए लिख दिया सुहृत साम विधनोति। विधनोति का मतलब होता है धो देते हैं, साफ कर देते हैं। अब जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना तो भगवान हृदय के अंदर आ जाते हैं और वो अकेले नहीं आते हैं, वो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? वो डिटर्जेंट लेकर आते हैं और स्कॉच जिसे साफ करते ना वो भी लेकर आते हैं, और जो दूसरी सफाई की जितनी जितनी चीजें हैं ना, विम बार लिक्विड और ये जितना भी पाउडर है ना, विम पाउडर, वो सब लेकर आते हैं। क्योंकि हृदय मलिन है, हृदय के अंदर बहुत सारी अभद्र हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो कि हम नहीं दूर कर सकते। कुछ कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम चाहते, हमारे अंदर बहुत ही इतनी बुरी आदतें हैं जो कि हम चाहते हुए भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो फिर ना हमारी कथा में रुचि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसी गंदे हृदय के साथ ही कथा श्रवण करनी है। कुछ बोलते हैं कि भाई हम नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं या फिर ये इस चीज में हमारी आसक्ति है, नहीं छूट रही है तो रहने दो, नहीं छूट रही है तो भी रहने दो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप खाली आके बैठ जाओ और कथा श्रवण करो। ये जो मुश्किल है ना सफाई का काम, आप कोई बोला कि भाई मैं कितना दिल करता है चाय छोड़ने का लेकिन दिल नहीं करता, मतलब मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर इतना पाव, तो तुम कर पाओगे भी नहीं। 15 दफा छोड़ चुके फिर से शुरू कर दिया। कोई भी चीज गंदी आदत जो आप छोड़ने का प्रयास करते हो कि अपने प्रयास पर रहने दो, करो ही नहीं, आप कथा श्रवण करो। केवल भगवान की कथा श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं कि कथा श्रवण करने से आपके हृदय के अंदर वैराग्य उत्पन्न होगा, फिर करने का दिल ही नहीं करेगा। आपके पास इतना समय भी नहीं होगा कि आप ये सोचो कि मुझे ये कार्य करना है, समय ही नहीं मिलेगा। कथा में इतना व्यस्त हो जाओगे कि कथा के अंदर इतना रुचि लग जाएगी कि और कोई अभद्र करने का आपके पास अवकाश ही नहीं बचेगा। क्योंकि जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करता है तो भगवान कथा के द्वारा उसके हृदय में बैठकर उसके हृदय के अनर्थों को धो देते हैं। तो सारे अनर्थ जो भौतिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, लालच है, वो सब दूर हो जाते हैं और कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती है। जब भक्ति बढ़ती है तो क्या होता है, हृदय की ग्रंथनी टूट जाती है, वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे, और अपराध मिट जाते हैं, हमारे कर्म क्षीण हो जाते हैं और कर्मों की जो गांठ है वो खुल जाती है और भगवत तत्व और विज्ञान हो जाता है केवल कथा श्रवण करने से। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगा संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्राणश्यति। इच्छा करने से नाश हो जाता है, लेकिन वही इच्छा यदि भगवान की कथा के प्रति होती है तो कथा श्रवण करने से अनर्थ दूर हो जाते हैं, अनर्थ दूर होने से भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है, भक्ति बढ़ती है तो हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, ग्रंथि टूट जाती है तो अपराध मिट जाते हैं, अपराध मिट जाते हैं तो कर्म क्षीण हो जाते हैं, और जब कोई कर्म नहीं रहते तो भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त होता है। ये सब हम इनसे श्लोकों में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा रिद्यंतस्थो या भद्राणी, जो जितने भी भद्र हैं, जितने भी अभद्र हैं, जितने भी गंदगी है, विदनोति सुहृतसाम, वो भगवान कथा के द्वारा हृदय में आते हैं और उसको साफ कर देते हैं। अनुवाद देखिए, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा उच्चारित किए जाने पर अत्यंत ही पुण्यप्रद हैं। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनने उनसे भिन्न अभिन्न है, यानी भगवान की लीला में, भगवान की कथाओं में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, वो साक्षात कृष्ण है। अतएव जब भी अपराध रहित होकर भगवान का श्रवण तथा कीर्तन किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित हैं, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को एक ही शक्ति प्रदान की है। नाम नाम कारी बहुदा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। तो भगवान की समस्त शक्तियां भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हैं। भगवान की जितनी ही शक्ति है उनके अंदर, इसके लिए कोई नियमित समय निश्चित नहीं है। नियमित सिमरणेन कालः, कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वह हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्दैवमीदृशमिहासनि न अनुरागः, दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को श्रवण करने तथा उनकी महिमा का गान करने के प्रति कोई भी रुचि नहीं है। हम पहले ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं कि कैसे होगा, रुचि कैसे उत्पन्न होगी। श्लोक नंबर 16 में पढ़ा था ना, शुश्रूषु शब्द धानस्य वासुदेव कथा रुचि जान महत् सेवया विप्रा पुण्य श्रवण कीर्तन। तो श्री पप्पा जी बोलते हैं उसका तो पहले ही बता दिया है, इसे भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, जब वे देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से तत्पर है और सर्वस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरलता से वापस चला जाए। यानी कि जब भक्त भगवान के साथ अपने प्रेम को विकसित कर रहा है, उनकी सेवा में पूर्ण निष्ठा से उनकी कथा श्रवण कर रहा है और श्रवण करने की इच्छा को बहुत तीव्रता से वो महसूस करता है, तो भगवान क्या करते हैं, श्रवण के माध्यम से कान के रास्ते से उसके हृदय के अंदर घुस जाते हैं। और वहां पर घुस के करते क्या है कि भक्त के हृदय को इतना साफ करते हैं, इतना साफ करते हैं कि भक्त उनके पास आसानी से, क्योंकि हृदय पवित्र होगा तो प्रेम उसके अंदर स्वतः, ये तो चैतन्य महाप्रभु की ड्यूटी है कि वो महावदन्य है, प्रेम डालेंगे, लेकिन पात्र तो साफ हो, तो भगवान हृदय के अंदर नाम के रूप में, कथा के रूप में बैठते हैं और कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो फिर कृष्ण दूर नहीं है, केवल कथा के द्वारा ही वो हमें कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। आगे श्री रूपा जी बहुत ही सुंदर चीज बता रहे हैं कि भगवान हमारी उपेक्षा अधिक उत्सुक हैं कि हम उनके पास जाएं। देखो भगवान कितनी कितनी योजनाएं बनाते हैं, कभी अपने इतने प्रिय भक्तों को भेजते हैं, भगवान कथा के रूप में सदैव हमारे साथ रहते कि किसी तरह से ये जीव मेरे पास वापस आ जाए, इसको दुखों वाली दुनिया में ज्यादा दिन तक रहना ना पड़े। तो भगवान बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि हम भगवान के पास आए, किंतु हम ही मूर्ख हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु हम में से अधिकांश वापस जाना नहीं चाहते हैं, केवल कुछ ही ऐसे हैं जो भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं और श्री कृष्ण तब सब तरह से उनकी सहायता करते हैं। सुहृत सतम का यही मतलब है कि अब जो कोई जाना ही नहीं चाहते, प्राप्त करना ही नहीं चाहते, तो उनके साथ वो क्या दोस्ती करें, वो चाहते हैं कि मैं सबके साथ करूं। भगवान कहते हैं सुहृदश्च सर्वभूतेषु, लेकिन यहाँ पर शिला सुखदेव शूद गोस्वामी बताते हैं कि नहीं, अब वो सबके साथ दोस्ती कैसे करें जो करना ही नहीं चाहते, वो भगवान हाथ बढ़ाते लेकिन वो नहीं बढ़ाते, तो फिर केवल भक्त जो जाना चाहते, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहते, उन्हीं के साथ वो दोस्ती करते और उन्हीं के हृदय के अंदर जो गंदगी उसको साफ करते हैं और स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं। कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता है जब तक वह समस्त प्रकार के अपराधों से मुक्त न हो जाए। हमारे भौतिक पाप हमारे द्वारा प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भगवत धाम जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधा है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सिद्धांत बड़ा बताते हैं कि आप जाना चाहते हो ना भगवान के धाम तक, आप ये अपने इन दुखों भरी दुनिया से तंग हो गए हो, आप चाहते हो कि सारे कर्मों की जो बंधन है, कर्मों का जिसके कारण आप बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहे हो, आप इनसे छूटना चाहते हो, तो सुन लो मेरी बात कि जब तक आप अपने पापों से मुक्त नहीं हो जाते, जब तक कर्म की ग्रंथ नहीं छूट नहीं जाती, जब तक ये सारे कर्मों का हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप भगवान के धाम में नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे जो भौतिक अपराध हैं, ये हमारे प्रभुत्व जताने की जो इच्छा है कि हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर प्रभु हम चाहते हैं हम सुखी होना चाहते हैं। ये इसमें से जब तक हम और चाहते हैं ये दो चीजें नहीं निकल जाती ना, तब तक हमेशा दुखी होंगे। हम निकाल दो, चाहते निकाल दो, क्या बचेगा? सुखी, सुखी, सुख। तो ये केवल जब ही पॉसिबल है जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं तो फलस्वरूप यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसी इच्छाओं से पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। भगवत धाम जाने के मार्ग में कामिनी और कंचन यानी धन, और कामिनी का मतलब होता है जैसे अवैध संघ होता है ना, वो स्त्री संघ और कंचन, ये बहुत ज्यादा बड़ी बाधाएं हैं, क्योंकि इच्छा होती है ना हृदय के अंदर। भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रबलों इन प्रलोभनों का शिकार होने से मुक्ति पथ से लौट आए हैं, किंतु जब भगवान स्वयं सहायक बनते हैं तो भगवत कृपा से सारी प्रक्रिया सुगम हो जाती है। कि है ना, काम वासना इच्छा समाप्त होती नहीं है हृदय के अंदर, लेकिन जब भगवान स्वयं सहायता करते हैं, सुहृत तसाम विदुनोति सुहृत तसाम, भगवान दोस्त बन जाते हैं, तुम्हारे हृदय के अंदर बैठते हैं, फिर हृदय के अंदर काम वासना को आने नहीं देते, इच्छाओं को आने नहीं देते हैं। जब भगवत कृपा हो जाती है तो बहुत आसानी से, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता 1.14 में कि तेषा हम सुलभ पार्थ, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं एवं मेरा कीर्तन करते हैं, उनके लिए मैं बहुत आसानी कर देता हूँ, उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न ही नहीं होने देता हूँ, उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा होती है कि वो कैसे मुझे प्राप्त करते हैं। कामनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है, और इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हृदय के अंदर काम वासना उत्पन्न होती है, सबके साथ अनादिकाल से सारे जीव जो हैं वो इसमें जकड़े हुए हैं। हम जैसे साधारण जीव की तो क्या बात करनी, हम देखते हैं बड़े बड़े देवता नारद शिव ब्रह्मा जी सब इन चीजों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि किंतु यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करता है, केवल भगवान की कथाओं का श्रवण करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का आभास हो जाता है, उसे क्या याद आ जाता है कि मैं क्या हूँ, भगवान का दास हूँ, मुझे केवल भगवान के दासत्व के लिए कार्य करना है, ये सब इच्छाएं करना मेरा कार्य नहीं है। तो क्या होता है, भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है। भगवान बहुत उसे पावर प्रदान करते हैं, क्योंकि हृदय शुद्ध होता है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, श्रवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, इस भगवान के श्रवण और कीर्तन से इतना भगवान कृष्ण, यहाँ पर देखो साफ साफ शब्द लिखा है कृष्ण, अभी तक हम ये प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय पढ़ रहे हैं, और साफ साफ श्याम सुत गोस्वामी कहते हैं हृदय की ग्रंथनी यदि टूटेगी तो केवल कृष्ण की कथा श्रवण करने से। कृष्ण के अतिरिक्त किसी और का नाम नहीं लिखा हुआ है, किसी और को जोड़ा नहीं गया है, केवल कृष्ण ही है सुहृत साम, केवल कृष्ण ही तुम्हारा मित्र है, जो क्या करता है, हृदयंतस्थो या भद्राणि, जो हृदय के अंदर अभद्र है, जो हृदय के अंदर गंदगी है, जिसके कारण आप इन सब भौतिक इच्छाओं को खत्म नहीं कर पा रहे हो, विघ्नोति, उसको आपके दोस्त आपका दोस्त कृष्ण आपके हृदय में बैठकर उसको साफ कर देता है, तो हृदय के अंदर कोई भी इच्छा बाकी रह ही नहीं जाती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताएं भगवत कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त हो जाती है, और वो विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है, और सारे उपद्रवकारी तत्व उसके मस्तिष्क से क्रमशः दूर हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका हृदय और उसकी बुद्धि इतने पवित्र हो जाते हैं कि वो केवल और केवल भगवान की कथाओं में रुचि लेने लगता है, और इस रुचि लेने से हृदय के अंदर जो भी गंदगी है वो सब स्वतः साफ हो जाती है। आप क्या अपराधों को नष्ट करोगे, कैसे खत्म करोगे, क्या एक एक अपराध हृदय को तोड़ेंगे और एक एक अपराध को निकालेंगे क्या हृदय से, नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सारा मुश्किल कार्य हृदय को साफ करने का भगवान को सौंप दो और आप सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं का श्रवण करो और भगवान के नाम का जप करो। केवल ये दो कार्य करने हैं, बाकी गंदगी साफ करने का मुश्किल कार्य तो उस कथा को सौंप दो, उस नाम को सौंप दो कि बस आप कृष्ण तुम्हें सौंपती है मेरा कारण। बस आप ये देखो कि मुझे एज इट इज कथा श्रवण को मिले। बस जो शब्द यहाँ पर शब्द लिखे हुए ना, जो भगवान के मुखारविंद से जो शास्त्र के अंदर जो शब्द लिखे हुए हैं उसको समझना है। और श्री प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य बताया एज इट इज, उसको समझने ये सौभाग्य है हमारा कि हम इसको समझने का प्रयास करते हैं, हमें भगवान ने अवसर प्रदान किया है। और यदि ये ऐसी आप सबकी इच्छा बनी रही तो एक दिन जरूर शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करने को हमें मिलेगा। लेकिन और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस श्रवण करना और भगवान के नाम का जप करना, इससे बाकी सारे कार्य जो भक्ति के हैं वो स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।